फिर तीसरा हमारा सवाल ये था कि तकवा मिल गया, चले समझ आ गई कि रोजे से मिलता है, ये भी पता चल गया कैसे मिलता है। तीसरा सवाल जो आपके सामने रखा था कि फिर तकवा के क्या फायदे हैं, तो अगर इसको ओवरऑल हम देखें तो इस पे तो पूरी मैंने एक बुक पढ़ाई हुई है तकवा पे, तो उसमें मैंने पूरी सीरीज करवाई थी रमज़ान और तकवा, अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज पे भी है, वेबसाइट पे भी आई थी, लेकिन उसमें तो बहुत एलेबोरेटेड था। यहाँ सिर्फ चंद बातें बता दूँ कि तकवा का पहला फ़ायदा या समर तो ये है कि ईमान की कुव्वत बढ़ती है, और ईमान ही तो वो चीज़ है जिसकी बेस पे कल हम तोले जाएंगे, क़यामत के दिन एक काफिर का वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। और एक सहाबी जो इब्ने मसूद, बहुत दुबली पतली टांगों वाले थे, दरख्त पे चढ़े हैं और खजूरें तोड़ रहे हैं, और नीचे मुनाफिकीन उनकी पतली पतली टांगों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद का मजाक उड़ाने वालों को ये नहीं पता कि इसकी एक एक टांग कल क़यामत के दिन आमाल नामों के पलड़ों में ओहद पहाड़ से भारी होगी। और आपने फरमाया कि एक काफिर को लाया जाएगा मोटे ताज़े को, लेकिन उसका वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। तो ईमान का ही असल वज़न है तकवा का। सबसे पहला फ़ायदा कि इससे ईमान आता है, अल्लाह की असमत और जलाल का नक्श दिल में गहरा होता है, उसकी इताअत और उसकी फरमाबरदारी में राहत मिलती है, इत्मीनान मिलता है, और गुनाह करते वक्त अल्लाह की पकड़ का डर है। यही चाहते हैं आप भी अपने बच्चों से, बिलीव मी, कि वो खुद सोचे, खुद अकल इस्तेमाल करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा फ़ायदा जो तकवा से हमें होता है वो क्या है कि अकीदा आखरत पुख्ता होता है। देखिए ना, आप एक काम कर रहे हैं और आपको उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, लेकिन आपका बिलीफ है कि कल मुझे इस काम का बदला आखरत में मिलेगा, तो रोज़ा रख कर जो अपनी लज्जत और अपनी ख्वाहिश की चीज़ों को इंसान छोड़ता है, ख्वाहिशात को तर्क करता है, तो ये इस यकीन पे करता है ना कि इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे आखरत में बेहतरीन बदला देगा, और इसका सिला पाना है, इसलिए आज की मशक्क़त कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी देखिए दीन के नाम पर क्या करने को दिल नहीं करता, सबका दिल करता है, पर क्यों नहीं कर पाते, कुछ उसका रिटर्न नहीं दिखता। आज आप और मैं दुनिया की तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजें, कल के शाम के सेशन में बहुत डिटेल से इस पर बात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को 16, 18, 20 साल तक एक प्रोफेशन के लिए भेजते हैं, फिर भी स्पेशलाइज करने के लिए मज़ीद 5-10 साल चाहिए। यकीन है ना कि इसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा, और फिर उसके बाद हज़ारों डॉलर की पे मिलेगी। अपने बच्चे और ख़ुद को दीन सिखाने के लिए कितना वक्त लगाते हैं? कोई 20 साल कुरान सीखने पे लगाता है? कहेंगे तो सब करते कितने हैं, 2 साल कह दें तो बहुत मुश्किल लगता है। आज तक आप और मैं अगर अपनी उम्र को देखें, जो भी आपकी हमारी उम्र है, 10 साल निकाल भी दीजिए शुरू के, उससे लेके आज तक मैंने कितने साल सोच के शऊर के साथ दीन की तालीम के लिए लगाए। मैं किसी स्कूल में गई, इदारे में गई, मदरसे में गई, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, एक उतर आ जाते सुनना, चस्का लगा उसको सुन उसको सुन, वॉन्डर ब्लाइंडली, चाहे आप यूट्यूब पे गए कुछ सुनते हैं, कोई लेक्चर आ गया सुनना, इट्स जस्ट लाइक लिसनिंग, ये एपेटाइजर है। जब तक हम दीन को ऐसे ही बाकायदा बैठ के ना सुने जैसे कि दुनिया की तालीम के लिए सीखते हैं, तब तक याद रखिए दीन की स्पेशलाइजेशन नहीं होती। आज आप एक लेक्चर सुनने आए हैं, इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बट सॉरी टू से ये तालीम नहीं हो रही इस वक्त, ये तस्कीर है, छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं, हम हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, आप में से 99% लोग लिख भी नहीं रहे, आप सुन ही रहे हैं ना, ये दर्स का अंदाज़ है। सो के मुझे भी ऐसी ही बातें करनी चाहिए कि मैं आपको बहुत रेफरेंसेज में ना उलझाऊँ, बट जिस दिन आप स्टूडेंट बन के आएंगे, आप कापी कलम हाथ में लेकर आएंगे, आप अर्ज टू लर्न लेकर आएंगे, फिर एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा याद करता है, इंसान को मज़ा आता है। इससे जो इंसान के अंदर मजबूती आती है वो कह लीजिए कि पत्थर की लकीर की तरह दिल में घटती है, तो तकवा के साथ वाकई इंसान के अंदर सब्र आता है। फिर आप देखिए कि एक और तकवा का फ़ायदा क्या है कि एक बंदा अल्लाह के हुक्म से रोज़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग रखता है और रात तक छोड़ता है, ख्वाहिशात पे पाबंदी और वही जो बात हम पीछे कर रहे हैं, इससे अपने अब्द होने का एहसास आता है। यानी आप ज़रा से मेरे इस जुमले को और पॉइंट को समझिए कि तकवा का एक थर्ड बेनिफिट क्या है कि मैं बंदी हूँ, मैं किसी के हाथों बंदी हूँ, जब मेरा मालिक कहेगा खा लो तो मैं खा लूँगी, जब छोड़ेगा तो छोड़ दूँ, अबूदियत पैदा होती है, सबमिशन, खुद सपुर्दगी। बात समझ गए? आज तो दौर है, आजकल तो बच्चे माँ बाप की भी नहीं सुनते, सच्ची जो बात है, आजकल माँ बाप नहीं कह सकते बच्चों को कि ये करो, कहते हैं डोंट डिक्टेट अस, वी नो आवर सेल्फ, हमें पता है क्या करना है। अब ये सरकशी है, ये आगे जाके इंशाल्लाह कहीं बात आएगी थोड़ी सी इस पे मज़ीद, लेकिन रोज़ा रखकर बंदा अल्लाह के आगे खुद को बंदा समझता है। इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, एक एक लम्हा अल्लाह के लिए, इन्नी लिल्लाह, या इन्ना लिल्ला, मैं अल्लाह का हूँ। तो इसी से आप देखिए कि ये बंदगी का और कमाल और अबूदियत का कमाल मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी है। चौथा फ़ायदा यानी फोर्थ बेनिफिट ऑफ द तकवा क्या है कि जब एक बंदे के अंदर बंदगी का रंग आ गया, बात समझ गए कि मैं अल्लाह की बंदी बन गई, तो आप सब में भी तो रोज़ा रखा तो आप भी तो सब अल्लाह के बंदे बने ना। तो जब इस सोसाइटी के सारे बंदे अल्लाह के बंदे बन गए तो एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जो सिबगत अल्लाह ही व मन अहसन मिन अल्लाह ही सिबगा में झलकती है, यानी अल्लाह के रंग से खूबसूरत कोई रंग नहीं। और इमेजिन तो करें रमज़ान के दिन और रात, क्या आपको सब मुसलमान एक ही कैफियत में नहीं दिखते? घर में, दुकान पे, दफ्तर में, कारखाने में, बाजारों में, तन्हाइयों में, मजलिस में, अमीर गरीब, हुक्मरान रियाया जो भी हैं, एक ही जज्बा है, सब का एक ही कैफियत है। सुबह फजर के वक्त गाड़ियां भी बाहर निकल आती हैं, ऐसे लगता है सब एक आका के आगे गुलाम बन गए, एक हाकिम के आगे महकूम बन गए। तो सोसाइटी में यूनिवर्सिटी पैदा होती है, यकसानियत होती है। जैसे आपने भी यहाँ भी मैंने देखा है, जिस दिन से आई हूँ, और नॉर्वे में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि आप अपना घर दूसरे से मुख्तलिफ नहीं बना सकते। बाहर से सबके घर एक जैसे हैं, अंदर जो मर्जी कर लें। उन्होंने चार कलर चूज़ किए हुए हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे और ऑफ वाइट। मोस्टली चीज़ें आपको घर के अंदर भी इन्हीं कॉम्बिनेशन में दिखती हैं। और हमारी तरह नहीं कि ये विला फुलां है और ये गुलाब महल और ये फूल महल, और वो घर ही देख के लोगों का हो सकता है कि टकराव हो जाए अगली गाड़ी के साथ, है ना हमारे मुल्कों में। जैसे यहाँ मैंने देखा है और मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है, मैं सोचती हूँ कि ये है असल में यकसानियत। और यहाँ एडम्बरा कल हम गए हुए थे, मुझे साथियों ने बताया कि इधर का जो स्टोन वर्क है ग्रे है, 90% घर आपको वहाँ सिर्फ ग्रे दिख रहे हैं। मैंने पूछा ये सब पुराने हैं, तो ने कहा जो नए बनते हैं वो उसमें आप कलर नहीं चूज़ कर सकते, जैसे कुछ मुल्कों में रेड है, लंदन में रेड है ज़्यादा, रेड और ऑफ वाइट बाहर आते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है। किसी के अंदर कोई है ही नहीं सेल्फ प्रोजेक्शन के मेरा घर देखो, देखा है हमने घर बनाया, बुलाते हैं लोगों को घर अपना दिखाने के लिए हैं, और साथ ये कि आप गिफ्ट भी आ जाएंगे हाउस वार्मिंग के नाम पे, हैं वैसे कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फ प्रोजेक्शन है ये ख़त्म हो जाती है, रोज़े के साथ एक ही रंग के होते हैं और सब लोग अल्लाह के आगे झुके हुए दिखते हैं, और ऐसे लगता है कि कोई छोटा नहीं रहा, कोई बड़ा नहीं रहा। वो कहते हैं ना, वो जैसे ये घर में कल देख रही थी तो मुझे वो शेर याद आ रहे थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो इससे बंदे के अंदर वो अकड़ और शो ऑफ और रियाकारी और दिखावा नहीं दिखता। किसी को बहुत करना है, अल्लाह ने उसको बहुत दिया, वो अपने इस घर के अंदर के कमरे को जितना मर्जी सजा ले, लेकिन बाहर से लोगों को जलाते नहीं है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और नेकी गालिब आती दिखती है और बदी मغلوب दिखती है। आप देखिए कि 90% आवाज़ें दबी जाती हैं ना बाहर, कहीं म्यूज़िक चल रहा है, कहीं गालम ग्लोच है, तो रमज़ान में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र दिख रहा होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे तकवा के फ़ायदे हैं जो आप उस सीरीज़ में से सुन सकते हैं। अब हम वापस चलेंगे रमज़ान के पहले फ़ायदे तकवा को डिस्कस करने के साथ साथ रमज़ान के दूसरे फ़ायदे पे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ जो सिर्फ मेरे और आपके लिए हकीकत में थॉट प्रवोकिंग और वो कहना चाहिए कि सोल सर्चिंग हो सकती है, कि आज हमारे मुसलमान मुल्कों में कितने सालों से हम रोज़े रख रहे हैं, कितने लोग रखते हैं। पाकिस्तान को हम प्यार करते हैं, हम उसी की मिसाल देते हैं, 90% से भी ज़ायद लोग वहाँ मुस्लिम्स हैं, रोज़े रखे जाते हैं। लेकिन क्या ये सारे जो असरात मैंने अभी थोड़े से डिस्कस किए हैं वो वहाँ नज़र आते हैं? एक महीना अगर आप एक बहुत खूबसूरत से ढंग में ढल सकते हैं तो उसके बाद क्या? और अब तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और कुछ लोगों की सुनी सुनाई और कुछ देखी भाली भी, कि पहले रोज़ों का एहतराम ज़्यादा होता था हमारे अपने मुल्कों में। टीवी बंद हो जाते थे लोगों के, मीडिया से सिर्फ इस्लामिक प्रोग्राम आते थे। पिछले साल मुझे एक क्लिप किसी ने भेजा और उसमें ये बात थी कि रमज़ान टाइम ओवर हो गया है, कब रोज़ा खोलते ही अब प्राइम टाइम है, कि हमारा प्राइम टाइम शो देखो। लोग तो पता नहीं किस सोच के साथ दिखाते हैं, लेकिन मैं उसको कुछ और एंगल से देखती हूँ कि वो दर्द पैदा होता है कि यानी लोगों ने, अब मीडिया वाले, और ज़ाहिर है कि उनका तो ये कमर्शियल बिजनेस है, एक महीना अगर रमज़ान में उनके प्रोग्राम बंद हो जाएं, मुहर्रम में 90% खुद ही बंद कर लेते हैं। बल्कि एक किसी की बात सुन रही थी, तो वो कहीं गए तो उनके वर्कर्स काम कर रहे थे और ईद में एक दो दिन रह गए हुए थे, रमज़ान के आखिर की बात है, तो ये कहते हैं कि वो जो सेठ साहब थे और वर्कर्स जो वहाँ लेबर वर्क कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा भाई इन अल्लाह के बंदों को छुट्टी दे दो, अब इन्होंने ईद पे जाना होगा अपने अपने घरों में, गांव में। तो वो जो सेठ साहब थे कहने लगे मुझे नहीं इनको पूछो, मैं तो इनको कहता हूँ छुट्टी करो, तो ये आगे से क्या कहते हैं, हमने नहीं ईद पे छुट्टी लेनी, हम मुहर्रम में छुट्टी लेंगे। और पूरा महीना मुहर्रम में मेरे लेबर्स नहीं आते तो मजबूरन फिर मुझे रमज़ान और ईद पे भी इनसे काम लेना होता है। यानी ईद का कोई इतना चाव नहीं है लेकिन मुहर्रम का उनको गुमान है। तो जिन सोसाइटीज़ में इतने परसेंट लोग साल में 30 या 29 दिन तक रोज़ा रखें तो क्या फिर वहाँ नेकी गालिब और बदी मगलूब नहीं होनी चाहिए? ये सवाल है। आज हम देखते हैं कि शर खूब फैल रहा है, नेकी सिमटती जा रही है, सुखड़ती जा रही है, हक की कुव्वतें कमज़ोर होती दिख रही हैं, बातिल की कुव्वतें दनदना रही हैं, हत्ता कि ये वक्त आ गया कि नेकी करने वाले मुँह छुपाते हैं और बुराई करने वाले डंके की चोट पे धड़ल्ले से बुराइयां कर रहे हैं। हालांकि हम साल हर साल से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते आ रहे हैं, क्यों नेकी का अमूमी माहौल नहीं बन रहा? क्यों हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही? हम क्यों अखलाक और किरदार की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं? इसकी वजह सिंपल है। इस सीरीज़ का पहला लेक्चर दिया था मैंने 2 दिन पहले, फ्राइडे को पहला लेक्चर था कि रोज़ा आदत या इबादत, उसको सुन लीजिए कि रोज़े को हम रस्म के तौर पे रखते हैं, आदत है, इसकी रूह नहीं ली, इसके अंदर जज्ब की वो कैफियत नहीं है, बस एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेंज कर लेते हैं खाने पीने का और दैट्स इट, बाकी चीज़ों में नहीं होते। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि रमज़ान का जो महीना आएगा उसमें तकवा को प्रमोट करना है, बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद करना है और फिर ऐसा ईमान हो कि जो 11 महीने हमारे ऊपर रहे। एक महीने के रोज़े रखा कर अल्लाह ताला ये एहसास दिलाता है कि अब 11 महीने तुमने खुद रुकना है। मैं आपको दावत दूंगी कि आप कुरान पाक की आयतें खोलें, आयत 183 से रोज़े का टॉपिक शुरू होता है और 147 तक तकरीबन रहता है। जहाँ रोज़े का टॉपिक पूरा होता है उससे नेक्स्ट आयत क्या है? ला ताकुलुम वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ, और रिश्वत की आयत उसके बाद। यानी अल्लाह ने यह सिखाया कि एक महीना हलाल से रुके हो तो 11 महीने हराम से रुको, ऐसे रोज़े रखे। और आपने हर दिन रोज़े के वक्त में इफ्तारी से पहले बैठकर अपने बच्चों से अपनी फैमिली से ये टिप्स शेयर करनी है, आज के रोज़े से बेटा आपने क्या सीखा, आज आप कितना अल्लाह के करीब हुए, और इस तरह से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला फ़ायदे से फ़ायदे होते जाएंगे। तो बहरहाल पहला फ़ायदा मुकम्मल हुआ, रोज़े से तकवा, और अब आपको तकवा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ज़िंदगी की कामयाबी ही तकवा से है। अब चलते हैं सेकंड समर, दूसरा फ़ायदा रोज़े के समरात में से, वो कहे कि रोज़ा नफ्स की सरकशी को तोड़ने में मददगार है। नफ्स की सरकशी कहाँ है या नफ्स की सरकशी का जोर रोज़ा कैसे तोड़ता है, इसको थोड़ा सा समझिए। सूरत यूसुफ 13वें पारे की पहली आयत, वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स को बेगुनाह साबित नहीं करता क्योंकि नफ्स तो हमेशा इंसान को बुराई की दावत देता है। तो थोड़ा सा समझिएगा कि आम तौर पे दो चीज़ें गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी का बायस बनती हैं। एक को तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कौन? शैतान। और दूसरा हमारा नफ्स। याद रखिए, आप फ़राई त मन तख़ इलाहु हवाहु, 2 दफ़ा कुरान पाक में बल्कि 3 दफ़ा ये मफहूम टच किया गया है, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो अपने नफ्स को अपना खुदा बनाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर, यानी आसमान से नीचे ज़मीन पर सबसे बड़ा बुत जिसको लोग पूजते हैं वो उसका नफ्स है। ये नफ्स की तो सारी खराबियां हैं। तो रमज़ान में शैतान तो बंद है, अब देखें ना, 2 मोटिव्स हैं, 2 इंसेंटिव हैं गुनाह के, शैतान और नफ्स। शैतान को तो जकड़ दिया, और यह हदीस जब आप पढ़ते हैं कि अच्छा सुलसिलाते शयातीन, जिन्नों को तो बांध दिया, कई लोग पूछते हैं अच्छा शैतान तो बंद गए हैं तो फिर गुनाह क्यों होते हैं? तो फिर जवाब मिल गया कि शैतान तो बंद है, नफ्स गुनाह कराता है। ये जो लेक्चर चल रहा था अभी तज़किरा नफ्स, इसमें भी ये बात बहुत डिटेल से कि हमारे ऊपर ये सारे हमले हो रहे होते हैं, तो अब नफ्स पीछे रह गया, शैतान तो अल्लाह ने बंद कर दिया, थोड़ा सा नेकी करना आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि रमज़ान के 30 रोज़े आसान हैं और शवाल के 6 रोज़े मुश्किल हैं, और फिर शवाल से लेकर अगले 10 महीने यानी रमज़ान के आने तक उसमें वो छुटे हुए 5-6 रोज़े रखने भी मुश्किल है। वजह क्या है कि रमज़ान में बड़े शैतानों को बंद किया, नेकी का रुझान होता है, खुदा खौफी का माहौल बन जाता है और फिर इंसान को नेकियां करनी आसान हो जाती हैं। लेकिन जूं ही रमज़ान जाता है वो शैतान तो खुलेगा। अब रह गई बात कि हमारा एक दुश्मन तो कैद में है, दूसरा दुश्मन था नफ्स। रोज़ा नफ्स की बढ़ती हुई सरकशी को लगाम देता है। बस इतना समझ लीजिए कि नफ्स के अंदर हैवानियत होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे दरिंदे नहीं होते, हमेशा गलत चीज़ों पे ले जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान लोगों के पास से गुजरते हुए उनको एक बड़ी प्यारी नसीहत की थी, और ये रिवायत जो है ये सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, कि या माशर शबाब, ए जवानों के गिरोह, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, तुम में से जो इस्तात रखता हो शादी की, फल या तजवज निकाह कर लो। क्यों? फइन्नहु, बेशक ये क्या करता है, अपनी सेंस में सुना देती हूँ, निकाह क्यों करो, क्योंकि ये नज़रों को पस्त करता है। नज़रें झुक जाती हैं जब बीवी मिल गई घर में, तो उसको दूसरी लड़कियों को ताड़ने की ज़रूरत नहीं, और शर्मगाह की हिफाजत में मुआविन है। यानी वो जायज़ हाजत पूरी हो गई, वो जो एक नफ्स के तकाजे थे, जब वो जायज़ तरीके से मिल गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखेगा। और अगर कोई इसकी ताकत ना रखता हो, अब हर मर्द इस काबिल नहीं है अभी के शादी करे, या वो करना चाहता है तो कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, तो फरमाया जो इसकी ताकत ना रखता हो फिर उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा नफ्स को दबा देता है, नफ्स का ज़ोर तोड़ता है। अब आप देखिए, इससे मैं ज़रूर बात करूंगी कि आज के दौर में बच्चों से लेकर जवानों की माएँ तक परेशान दिखती हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, हाइपर बहुत हैं, क्रैंकी बहुत हैं, लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं। छोटी बच्चे, यानी 2-3 साल के बच्चों की माँ के अमूमन ये जुमले होते हैं। वो सोचती हैं ज़रा से बड़े होंगे, इनको अकल समझ आ जाएगी, ठीक होंगे। फिर वो 12-14 साल की उम्र में होता है तो माँ की परेशानी इससे दो चंद होती है। अब बात ही नहीं सुनते, पहली तो ये बड़ी अच्छी बच्ची थी, अब गर्दन अकड़ रही है। पहले ये स्काफ भी लेती थी, मेरे पास माएँ आती हैं कहती हैं ये बच्ची मेरी 7-8 साल की उम्र से शुरू हो गई थी स्काफ लेना, खुद लेती थी, जोश से इसने लिया, स्कूल में भी ले जाती थी। अब क्या, अब खिंचती है, अब इसको शर्म आती है, अब स्कूल में और लड़कियां मजाक करती हैं। तो किसी भी दौर में कोई भी हो, याद रखिए, उसको आप और मैं अपने काबू में लाना चाहते हैं अगर, तो उसके नफ्स का जोर तोड़े। ऊंट है ना या घोड़ा, अपने मालिक की मदद करता है, उसको सवारी में मदद दे रहा है, लेकिन जब वो सरकश होता है तो आप कहते हैं कि ऊंट अपने मालिक को खा जाता है, कीना बहुत बुरा है उसका। इसी तरह घोड़ा जब सरकश होता है तो अपने ऊपर बैठने किसी को देता ही नहीं है। तो औलादे हैं या हम खुद हैं, इन सब को हम चाहते हैं ना कि दे विल लिसन मोर टू अस, हमारी बात सुने, अकड़े नहीं। आज तो कपड़े नहीं आपकी पसंद के पहनते, खाना नहीं खाते, कल वो रिश्ते कैसे आपकी पसंद से करेंगे? कितने पेरेंट्स आज रिश्तों पर मजबूर हैं, परेशान हैं, बच्चे शादी नहीं करना, क्योंकि जहाँ माँ चाहती है बच्चा नहीं चाहता, जहाँ बाप चाहता है वहाँ बच्चा नहीं चाहता, जहाँ बच्चे चाहते हैं वहाँ माँ बाप नहीं चाहते। तो आप कह लीजिए हम्बल डाउन, यानी नफ्स की सरकशी को अगर आप अपने लफ्ज़ों में कहें, इफ़ वी वॉन्ट कि अगर हमारे केयर्स और हमारे घर साथ और इवन हम खुद भी हम्बल हो जाएं, रोज़ा इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। आप देखें ना, एक चीज़ को आप कई दफ़ा दिन में उसको प्रेस करके किसी वज़न के नीचे रख दें तो पॉसिबल है कि उसके कुछ बल या उसकी सिलवटें जो दूर हों। इस्त्री करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, हम प्रेस कर रहे होते हैं ना, उसको प्रेशराइज भी करते हैं, हीट अप भी करते हैं, कपड़े के सारी सिलवटें निकल जाती हैं, रिंकल्स निकलती हैं, क्लीन होता है। तो रोज़ा जो है ये हमारे नफ्स के बल कस निकाल देता है, या मैं बिल्कुल प्लेन कर देता है। अबू उमामा बाहली की एक रिवायत है सुनन नसाई में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह मुरनी, मुझे हुक्म दीजिए, बी अमरेन, किसी ऐसे काम का, यनफाउनिल्लाहु बिही, जिसके ज़रिए अल्लाह मुझे नफ़ा दे। यानी देखिए उनकी सोच क्या थी कि मुझे ऐसा काम बताइए जिससे मुझे फ़ायदा हो। जो चीज़ दिल में होती है ना, उसी के लिए बंदा कोशिश करता है। उस दौर में नेकियों का रिवाज था तो सहाबा के सवाल यही होते थे, आज पैसों, चीज़ों, घर, हम इनके सवालात ज़्यादा करते हुए देखते हैं। तो खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सियाम, रोज़े को लाजिम पकड़ लो, फइन्नहु ला मिसला लहू, इस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो दूसरा फ़ायदा हमने क्या देखा, पहला क्या था, आप सब बोले तकवा, शाबाश। दूसरा क्या पढ़ लिया, नफ्स की सरकशी दबती है। रोज़े का तीसरा समरा, तीसरा फ़ायदा क्या है, सब्र का वसफ रासिख हो जाता है, बंदा पेशेंट बन जाता है। और आपको पता है कि सब्र एक ऐसा अमल है जिसके बगैर ना दीन पर अमल हो सकता है और ना ईमान के तकाज़ों को पूरा किया जा सकता है। और सब्र ही बंदे के अंदर ऐसा हौसला पैदा करता है कि एक तरफ अल्लाह की रज़ा है और दूसरी तरफ सारी दुनिया। इंसान इस सब्र की वजह से अल्लाह के लिए लड़ जाता है और बातिल से पीछे हो जाता है। और दुनिया के काम क्या सब्र के बगैर होते हैं? आप में से किसी ने अगर मेडिकल किया है तो क्या बगैर सब्र के कर लिया? अगर आज किसी ब्रदर ने $1,000 या £1,000 से बिजनेस शुरू किया और आज अल्लाह के हुक्म से वो लाखों में है, तो क्या आराम से हो गया? क्या आपका ये घर जो 4-6 कमरों का है, ये बगैर सब्र के साफ सुथरा रहता है? जिंदगी की लाजमी ज़रूरत सब्र है। अगर आप देखें तो सब्र के लफ्ज़ को फिर अगर थोड़ा सा तकवा की तरह देखें, हालांकि सब्र पे भी एक्स्ट्रा बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन सब्र के मफहूम में आमतौर पे तीन चीज़ें होती हैं, उसको नोट कर लीजिए। नंबर 1, अपने नफ्स पर कंट्रोल करके, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से और उसकी नाफरमानी से रुकना, इसको सब्र कहते हैं। दिल कर रहा है गीबत करने को, अंदर टेम्पटेशन है, गुदगुदी हो रही है, ख़ारिश हो रही है, पर नहीं, गीबत हराम है। जिस तरह जिना हराम है ना, इस तरह गीबत भी हराम है। अब जब आप अपने नफ्स के ऊपर काबू पाएंगे तो आप सब्र करें। यानी जो सिस्टर इसलिए गीबत नहीं करती कि ये हराम है, वो साबिरा है। और ये सब्र कितना मुश्किल है। आपके सामने आपकी मनपसंद चीज़ पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं करनी, हराम है। ये पहनना नहीं है, ये हराम है। ये देखना नहीं, ये हराम है। ये सुनना नहीं, ये हराम है। ठीक है, तो जो मना करदा चीज़ें उससे रुकने को सब्र कहते हैं। सेकंड डायमेंशन ऑफ पेशेंस, यानी सब्र का दूसरा पहलू क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में नफ्स की लज्जतों और इसके हैवानी तकाजों को तर्क करना। आसान लफ्ज़ों में यह है कि जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसमें भी तो मसला होता है ना। कभी सर्दियों में वजू करना मुश्किल लगता है, पर आप करते हैं। यानी नेकी के कामों को करना, ये भी सब्र है। आप बताइए कि जिस तरह गुनाह से रुकने में एनर्जी लगती है, उस तरह नेकी करने में भी एनर्जी नहीं लगती? रात को बिस्तर छोड़ते हैं तो फिर ही फजर या तहज्जुद मिलती है ना, तो ये सब्र है। तीसरी डायमेंशन क्या होती है कि अल्लाह के दीन पर अमल करने में जो मुश्किलात पेश आएँ उनको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें, स्माइलिंग फेस के साथ, कि मुझे मेरे दीन पर कभी नहीं मुश्किल आई, और लोगों की लानत मलामत से बचे। कोई बात नहीं, जो कहते हैं वला तखाफून लवमतलाइम, सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफत बयान की है। तो रोज़ा इंसान के नफ्स की लज्जतों और उसके हैवानी तकाजों को नज़रअंदाज करके अल्लाह के हुक्म से बंदे को अमल करने में मदद कर देता है। और आज मैं एक छोटी सी बात कहूँगी ज़रूर, कि आज मसला सब्र का है। आप सब्र में बर्दाश्त रख लें। जिस मुल्क और जिस कम्युनिटी में भी मैंने जाके करीब से देखा, और मेरी आदत है, मैं जहाँ जाती हूँ मैं पूछती हूँ कि आपकी इस कम्युनिटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं। हर एक के फ़र्क होते हैं, कुछ हद तक सेम होते हैं, ताकि अगर मैंने कल से बात करनी है तो मुझे पता चले कि इन बेचारों का प्रॉब्लम क्या है और मैं उसमें इनकी मदद करूँ। जैसे डॉक्टर एकदम तो इलाज नहीं करता ना, पहले वो बीमारी जानता है। 99% मुल्कों और शहरों में जो मुझे प्रॉब्लम लोगों में की ज़ुबान से पता चलता है, वो रिश्तों का प्रॉब्लम है। शादियाँ नहीं होती, होती हैं तो निभती नहीं। हर दूसरा घर ब्रोकन घर क्यों बना है? सब्र की कमी है। ब्रॉट अप ठीक नहीं करते, हम अपनी बच्चियों को सब्र नहीं सिखाते, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, शेयरिंग कम है। और यही मामला लड़कों के साथ भी किसी हद तक है। बल्कि मेरी इस साइड बात को अगर आप मेरा पर्सनली व्यू कह कर पीछे डाल दें, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, 100% गलत हो सकती है, क्योंकि मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ, कि कल के दौर में, यानी आज से 20-25 साल पहले, घरों के टूटने, घरों के ना बनने में मर्दों का या लड़कों का हाथ होता था। लड़के जालिम थे, करप्ट थे, उधर देख इधर देख, केयर नहीं करते, बॉस बन के घर में रहते थे, बॉसी थे। आज के दौर में जो मैं देखती हूँ, घरों के टूटने या ना बसने में मोस्टली लड़कियों का हाथ है, वल्लाहु आलम। और उसकी वजह साफ समझ आती है कि हमने लड़कियों को लड़के बनाकर पाला, बचपन से ही उसका ब्रॉटअप एक भाई के साथ उसी तरह हुआ। लड़कियों के मिजाज में नरमी, बर्दाश्त, सुकून, बहुत कुछ अल्लाह ने डाली है। इस पे फिर बहुत कहूँगी, अलग से टॉपिक मौजूद है, बेटियों की तरबियत कैसे करें और बेटों की कैसे करें। हमने बेटी को बेटा बना दिया, इस सोसाइटी को जैसे मर्द है वैसी लड़कियाँ मिल गईं। ठीक है, आप दुनिया की तरक्की करें, लेकिन मिजाज में बहरहाल फ़र्क है। अब ये मेज़ है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी नीची है ना और मेज़ ऊंचा है। ऐसा क्यों है कि मैं कुर्सी पे बैठी, मेज़ पे चीज़ें रखी, मेरा बैलेंस ठीक है? ये कुर्सी कहती मुझे ऊपर करो, इसके बराबर करो। आप मुझे बताएं, अगर ये कुर्सी भी इधर तक होती तो क्या मैं इस टेबल से फ़ायदा उठाती? ये लड़की है बेंडेड, सॉफ्ट, अल्लाह ने औरत के मिजाज में बहुत नरमी रखी है। ये फॉर्म है, ये स्टिफ है, ये कवाम है, ये मर्द है। ये बैलेंस रखेंगे तो घर बनते रहेंगे। और जब लड़की कहती मुझे क्या कमी है, और पहले होता था बीवी शौहर से लेके खाती थी तो दबती थी, अब वो कहती आपसे ज़्यादा तो मैं कमाती हूँ, मैं आपकी बात क्यों सुनूँ? आज लड़के बेचारे वो भीगी बिल्लियाँ बन के पीछे फिर रहे होते हैं। और बास दो, हर एक को नहीं मैं कहूँगी, मैं फिर कहूँगी आपको, आज भी बहुत बेहतरीन, प्यारी, सब्र, बर्दाश्त वाली लड़कियाँ, लेकिन एक ओवरऑल मुआशरे का रंग जो है ना, वो थोड़ा सा बदला हुआ है। तो सब्र बहुत ज़रूरी है, और रोज़ा आपको मुझे सब्र सिखाता है। चौथा फ़ायदा या समरा रोज़े का क्या है कि रोज़े से अख़ुव्वत और हमदर्दी का एहसास उजागर होता है। आप देखिए कि आप भूखे रहे, प्यासे रहे, दूसरों की भूख और प्यास का एहसास हुआ? जब आपकी ज़िंदगी खुशियों में पल रही है, माशाल्लाह अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, ना फ्रिज खाली है, ना पेंट्री खाली है, लेकिन वो लोग जो तंग दस्ती में, फ़कर में हैं, क्या आपको मुझे उनका एहसास नहीं होता? और रोज़ा रखा हो ना, फिर पता चलता है कि फलां दिन उनका रोज़े में मूड क्यों ख़राब था। रोज़ा रखते हैं तो आपके अपने अंदर एक कमी और एक नकाहत आती है ना, इससे आप दूसरों के मसले को समझते हैं। नबी सल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखने में और एक दूसरे के साथ रहम करने में और एक दूसरे के साथ शफकत और नरमी करने में मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बॉडी की तरह है, कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेदार भी रहता है और बुखार में मुबतला होता है। तो पूरी सोसाइटी जब रोज़े से है तो सबका दुख सुख एक हो जाता है और आप फील करते हैं कि फिर इसके बाद हम दूसरों के मोर हमदर्द हो जाते हैं, हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। और इसी रिवायत के अंदर एक और लफ्ज़ में आता है कि सब मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर आँख में दर्द हो तो सारा जिस्म इसका दर्द महसूस करता है और सर में दर्द हो तो भी जिस्म दर्द को महसूस करता है। तो बहरहाल हम लोग इस चीज़ को महसूस करें। आप देखिए कि यहाँ तो शायद हमें बाहर के मुल्कों में कोई गरीब दिखता नहीं, होंगे तो सही लेकिन उस तरह नहीं दिखते जो अपने मुल्क में आपको सड़कों पर रुलते हुए दिखते हैं। खाना खाने जाएं और फकीरों को देख के आपका दिल करता है वापस चलते हैं, ऐसे वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। एक तो प्रोफेशनल बेगर्स हो गए, वो तो एक बहुत बड़ा नासूर है, लेकिन गुरबत को देखकर आपकी अपनी मज़ा नहीं आता। आप एसी में बैठे हैं, बाहर लोग धूप में जल रहे हैं, खुशी नहीं होगी ना। तो रोज़े के साथ दूसरों का गम महसूस होता है। पांचवा फ़ायदा रोज़े से क्या है या पांचवा समरा क्या है कि रोज़ा अखलाक और किरदार की बुलंदी पैदा करता है, एथिकली आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आप कह लीजिए कि रोज़ा आपकी करेक्टर बिल्डिंग करता है। नबी सल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ढाल क्या होता है? प्रोटेक्टिंग शील्ड, क्या है कि ये जहन्नुम से बचाएगा। जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो दिल लगी की बातें करे ना शोर व शगब करे, यानी लगवियात तो और टाइम वेस्टर्स में ना पड़े। अगर कोई इसको गाली दे या इससे लड़ने की कोशिश करे तो क्या कह दे? इन्नी साइमुन, कि मैं रोज़े से हूँ। तो आप देखिए कि किसी को भी गालियाँ अच्छी नहीं लगती, किसी को शाउटिंग अच्छी नहीं लगती, ऊंची बोलना अच्छा नहीं लगता, तो रोज़े से आपको मुझे फितरी तौर पर ये एक फीलिंग आती है। ये अलग बात है कमज़ोरी होती है, और बाज़ माएँ बच्चों को शोर करता देख के कहती ठहर जाओ ज़रा, रोज़ा खोल लूँ फिर तुमसे पूछती हूँ। अब तो डांटने की भी हिम्मत नहीं है, हैं तो वो वक्ती सही हो लेकिन बहरहाल कुछ उसमें रहता है। और याद रखिए कि वो रोज़ेदार जो रोज़ा रख के भी ये कुछ ना छोड़ें, उनके लिए बहुत बड़ी वईद है। धार्मी की रिवायत है, आपने फरमाया, कम मिन साइमिन, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं, लैसा लहू मिन सियाम ही इल्ला ज़मान, उनको कुछ नहीं मिलता अपने रोज़े से सिवाय प्यास के। वकम मिन क़ाइमिन, और कितने रातों को क्याम करने वाले ऐसे हैं, लैसा लहू मिन क़ियाम ही इल्ला सहर, नहीं उनको कुछ मिलता अपने क्याम से सिवाय थकन के। तो दुआ कीजिए कि रोज़ा रख कर भी हम बेरोज़ ना हों। कई लोग हैं वो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन वो गालियों से इफ्तार करते हैं और कई गीबतों से इफ्तार करते हैं। बहुत बदनसीब हैं वो लोग जो रोज़ा रख के गीबतें करते हैं और चुगलियाँ खाते हैं और उनको उसमें से नहीं मिलता। तो अब आप देखिए कि ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, मुझे लगता है कि आज के इस वक्त के अतबार से इतना काफ़ी है, फ़वाद इससे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को नफ़े नुकसान से हटा कर भी देखें जो आपके मेरे अपने अमल के अंदर आपको दिखता है, हमें वो क्या दिखता है कि वाकई हर साल रोज़ा रखने के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली आती है कि नहीं। मेरा फेवरेट टॉपिक ही ये है, कोई बात भी कर ले लेकिन एंड पे सेल्फ असेसमेंट करें, क्या आज तक जितने साल मैंने रोज़े रखे, मसलन आप अपने ज़िंदगी के शुरू के 10 साल निकाल दीजिए और आपकी आज की जो मौजूदा उम्र है उसको हिसाब लगाएं, तो कमो बेश इतने साल आपको मुझे रोज़े रखते हुए हो गए हैं, क्या मैंने इन रोज़ों से फ़ायदा उठाया? ये सवाल है। अब देखें ना, मैंने आपको पांच फ़वाद बड़े करके जिसके अंदर एलेबोरेट करके तकवा के मज़ीद पांच फ़ायदे और सब्र के तीन फ़वाद बताए आज, जो पूरा खुलासा आज की मेरी बात का था। क्या आपको मुझे ये मिले? यानी अगर सारे टॉपिक को आप गो थ्रू कर लें तो क्या आपको मुझे रोज़ा से तकवा मिला? क्या मेरा नफ्स दबा? क्या मेरे अंदर सब्र आया? क्या ख़ुव्वत और भाईचारगी मिली? क्या मेरे अंदर दूसरों की हमदर्दी का एहसास आया? अगर आया तो मुबारक हो आपको, आपका टेस्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप में मेरे अंदर इन चीज़ों में कमी है तो ये ख़तरे की बात है। देखिए, खाएं और भूख ना मिटे, ताकत की गोली खा रहे हैं लेकिन ताकत नहीं मिल रही तो ख़तरा। फिर ये समझ लीजिए कि वो रोज़े नहीं थे, वो बस हमने एक बात रखी थी। कोई बात नहीं, अगर आज उनमें से चार चीज़ें नहीं है, एक ही है सिर्फ, तो अभी ज़िंदगी है। इस साल के रोज़ों को आप ये जो आज मैंने पॉइंट्स दिए हैं, अगर इनमें से आप में से कोई भी इसकी एक छोटा सा चेकलिस्ट बना दें, हैंड आउट बना के हम उसको ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। आप सबने जो आज लेक्चर सुना है, आप नहीं लिख सके कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर जाते हुए अपना फ़ोन नंबर, जिस पे आपका व्हाट्सएप का नंबर है, तो आपको किसी भी ग्रुप में ऐड किया जा सकता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें इस तरह से शेयर की जाती हैं कि आप बॉदर नहीं होते। चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।